अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है, किताब चट्टानों में फायर, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 3। यहाँ सभी पुरस्रार हैं, इमरान ने कहा और मार्था की तरफ देखकर हंसने लगा। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ सका, कर्नल ने इमरान से कहा। मुझे हैरत है कि जरगाम ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी कैसे बना रखा है, वो तो बहुत ही उस्तावर है। मैंने कन्फ्यूज के अकवास सुनाया करता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तुमने फिर इसका नाम लिया, क्या तुम मुझे चिढ़ाते हो, कर्नल बिपर गया। नहीं अंकल, सूफिया जल्दी से बोली, ये इनकी आदत है, गंदी आदत है। इमरान लापरवाही से कॉफ़ी पीता रहा। ये MSc और PhD हैं, आरिफ हंस कर बोला। फिर तुमने बकवास शुरू की, अंदर में दांत पीस कर कहा। बोलने दो, मैं बुरा नहीं मानता, कन्फ्यूज इरर नहीं हिप, इमरान ने कहा और बौखलाहट की एक्टिंग के साथ अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया। मार्था और सूफिया हंस पड़े, इस बार कर्नल भी हंसने लगा। बातोश का चेहरा बंदर था, बंजर ही रहा। खफीफ से मुस्कुराहट की झलक भी ना दिखाई दी। दफ्तर इन्होंने फाटक पर कदमों की आवाज़ सुनी, आने वाला इधर ही आ रहा था। वो अंधेरे में आके फाड़ने लगे। बाग के आखिरी सिरे पर काफ़ी अंधेरा था, बरामदे में लगे बल्बों की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती थी। फिर आने वाले की टांगें दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने रास्ता देखने के लिए एक छोटी सी टॉर्च रोशन कर रखी थी। आने वाला रोशनी में आ गया। वो इन सब के लिए अजनबी ही था, एक तनुमंद आदमी जिसने कत्थई सिरिज का सूट पहन रखा था। माफ़ कीजिएगा, इसने बरामदे के करीब आकर कहा, शायद मैं मखमल हुआ, कर्नल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी नहीं, सूफिया जल्दी से बोली, तशरीफ़ लाइए। आने वाले कुर्सी पर बैठ गया। सूफिया बोली, वो बाहर गए हैं, कब तक तशरीफ़ लाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि कल आ जाएं, हो सकता है एक हफ्ते के बाद। ओ ये तो बुरा हुआ, अजनबी ने कहा और उचटती सी नज़र हाजरीन पर डाली। इमरान को देखकर एक लहजा इस पर नज़र जमाए रहा, फिर बोला, कहाँ गए हैं? अफसोस कि वो अपना प्रोग्राम किसी को नहीं बताते, सूफिया ने कहा। आप अपना कार्ड छोड़ जाएं, आते ही इनसे तज़करा कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी का काम है, अजनबी ने अफसोस जाहिर किया। आप वो काम उससे कह सकते हैं, इमरान बोला, मैं कर्नल का प्राइवेट सीक्रेट हूँ। ओह, अजनबी ने हैरत का इजहार किया, फिर संभल कर बोला, तब तो ठीक है, क्या आप अलग थोड़ी सी तकलीफ़ करेंगे? बस इतना ही सा काम था, इमरान ने अहमकों की तरह कहा, लेकिन इनमें अलग थोड़ी सी तकलीफ़ का मतलब नहीं समझ सका। वो तकलीफ़ किस किस्म की होगी, गला तो घोटना ना होगा? ओह मेरा मतलब है, ज़रा अलग चलेंगे, मैं अलग ही चलता हूँ, आज तक किसी से टांग बांध कर नहीं चला। अरे साहब, कहने का मतलब ये क्या, ज़रा मेरे साथ आए। ओह तो पहले क्यों नहीं कहा, इमरान उठता हुआ बोला, चलिए चलिए। वो दोनों उठकर बाग के फाटक पर आ गए। आप अली इमरान साहब हैं, अजनबी ने पूछा, मैं कर्नल का सिक्योरिटी हूँ। वो तो ठीक है, देखिए मेरा ताल्लुक महकमा सुराग रसानी से है, और खालिद। ओ नाम, हमें फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन फयाज की तरफ से हिदायत मिली है कि हम आपकी हर तरह मदद करें। ओ फयाज, हाँ हाँ, बड़ा ग्रेट आदमी है और ज्ञानों का यार है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सी बात के लिए अपने महकमा तक के तमाम आदमियों को खतूत लिख देगा, वाह भाई। बात क्या है, इंस्पेक्टर खालिद ने पूछा, क्या ऐसे वो बात नहीं लिखी? जी नहीं, लिखता ही क्या, बात यह है मिस्टर खालिद के मुझे बटेर खाने और बटेर लड़ाने वालों का शौक़ है, और आपके यहाँ बटेरों की शिकार पर पाबंदी है। फयाज ने कहा था कि मैं इजाज़त दिलवा दूंगा। खालिद चलना में हैरत से इमरान को देखता रहा, फिर बोला, आपने ये क्यों कहा था कि आप कर्नल के सिक्योरिटी हैं? फिर क्या कहता, वो शायद आपको इस कहने पर दूसरी हैसियत से एतराज़ है। बिल्कुल ठीक मिस्टर खालिद, बात दरअसल ये है कि मैं यहाँ आया था मेहमान ही की हैसियत से, लेकिन बाद को नौकरी मिल गई, कर्नल ने मुझे बेहद पसंद किया, मैं इनके लिए दिन भर एयरगन से मक्खियां मारता रहता हूँ। आप मुझे टाल रहे हैं जनाब, खालिद हंस कर बोला। फिर उसने संजीदगी से कहा, हालांकि ये मामला बहुत अहम है। कैसा मामला? इमरान ने हैरत से कहा। कुछ भी हो, आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं। इसका मुझे यकीन है कि आप कैप्टन फयाज के खास आदमियों में से हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। ज़रूर कीजिए। क्या कर्नल ने बराह रास्त फेडरल डिपार्टमेंट से मदद तलब की थी? इमरान चौंक कर इसे ढूंढने लगा। मदद में इन्हें समझा, इसने कहा। देखिए जनाब, खालिद ने कहा, हो सकता है कि आप इस महकमे में बहुत दिनों से हों, लेकिन मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूँ। यकीनन आप मुझसे सीनियर ही होंगे, इसलिए मैं आपके मुकाबले का अहल नहीं हो सकता। लिहाजा आप खुलकर बात कीजिए तो शुक्रगुजार होऊंगा। अच्छा, मैं खुलकर बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे बात की नौीयत समझने दीजिए। आपके जहन में कर्नल के मुतालिक क्या है? कुछ नहीं, लेकिन एक बात, खालिद सोचता हुआ बोला। ठहरिए मैं बताता हूँ। बात यह है कि आप सोनागरी में नौवारिद हैं। हम लोग पिछले एक माह से एक पुरेसरार आदमी या गर्दा शिफ्टन नामी की तलाश में हैं, जिसने यहाँ के दौलतमंद लोगों को धमकी के खतूत लिखे हैं, इनसे बड़ी रकमों का मुतालबा किया है। धमकी के मुताबिक अदम अदायगी की सूरत में इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब ने इसकी रिपोर्ट की है, मगर क्या? इमरान जल्दी से बोला, हमें कर्नल जरगाम की तरफ से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मौसूल हुई। तो आप ज़बरदस्ती शिकायत मौसूल कराना चाहते हैं? इमरान हंस पड़ा। ओ देखिए, आप समझे नहीं, बात यह है कि आखिर कर्नल को क्यों छोड़ा गया, और अगर इसी तरह की धमकी उसे मिली है तो इसने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? वाकई आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा चलिए, फर्ज कीजिए कि कर्नल को भी धमकी का खत मिला, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो आपके महकमे को इसकी इत्तला दे? मुमकिन है वो इसे मजाक समझा हो। मजाक ना भी समझा हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी कुव्वत बाजू के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि कर्नल को भी इस किस्म का कोई खत मिला है या नहीं। मैं वसोक से नहीं कह सकता, इमरान बोला, मुझे इसका इल्म ही नहीं। आपको कैप्टन फयाज ने यहाँ क्यों भेजा है? मेरी खोपड़ी का मगज दरमियान से क्रैक हो गया है, इसलिए गर्मियों में ठंडी हवा ही मुझे रास आती है। ओ, आप कुछ नहीं बताएंगे? खैर अच्छा, इस तकलीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कर्नल की वापसी का मुंतजर रहना पड़ेगा। वैसे हम फिर मिलते हैं, इमरान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओ ज़रूर ज़रूर, खालिद ने कहा और मुसाफा करके रुखसत हो गया। इमरान भी बरामदे में लौट आया। यहाँ सब लोग बेचैनी से इसकी वापसी के मुंतजर थे। कौन था? सूफिया ने पूछा। महकमा सुराग रसानी का इंस्पेक्टर खालिद। क्या कर्नल डिक्सा ने हैरत का इजहार किया? क्या बात है, सूफिया ने मुसरबाना लहजे में कहा। इस पर इमरान ने पूरी बात दोहरा दी। वो सब हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। इसने सूफिया से पूछा, क्या कर्नल को शिफ्टन की तरफ से कभी कोई खत मिला है? नहीं, यही तो मैं कह रहा था कि आखिर इन्होंने अपने अजीज अजान सिक्योरिटी से इसका तذکرہ क्यों नहीं किया? तुमने दूसरे मामले का तذکرہ नहीं किया? कर्नल डिक्सन ने पूछा। हरगिज नहीं, भला किस तरह कर सकता था? तुम वाकई क्रीक मालूम होते हो। जी हाँ, कंफ्यूज। अरे नहीं, मेरा अपना कॉल है कि अच्छा मुलाजिम वही है जो मालिक के हुक्म से ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। जहन्नुम में जाओ, कर्नल गुर्रा कर बोला और वहां से उठ गया। इंस्पेक्टर खालिद सोनागरी के जेफरेज होटल की रक्षा में खड़ा नाचते हुए जोड़ों का जायजा ले रहा था। इसके साथ इसके सेक्शन का DSB था। देखिए वो रहा, खालिद ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, जो डिक्सन की लड़की मार्था के साथ नाच रहा था। आज सूफिया अपने मेहमानों समेत यहाँ आई थी, लेकिन इसने रक्स में हिस्सा नहीं लिया था। अच्छा, DS ने हैरत का इजहार किया, ये तो अभी लौंडा ही मालूम होता है। खैर, मैंने कैप्टन फयाज से इसकी हैसियत के मुतालिक पूछा है। वो इधर गालिबन जरगाम की लड़की सूफिया है। इसके साथ वो दाढ़ी वाला कौन है? कोई मेहमान है, बारतोश जीकू सुलवाकिया का बाशिंदा, और वो कर्नल डिक्सन है। इसकी लड़की मार्था इमरान के साथ नाच रही है। इस इमरान पर गहरी नजर रखो, DS ने कहा। अच्छा मैं जाऊंगा, डीएस चला गया। रक्स भी खत्म हो गया। इमरान और मार्था अपनी मेजों की तरफ लौट आए। खालिद चंद लम्हे ने घूटा रहा, फिर वो भी रक्स गाते चला गया। इमरान बड़ी मौज में था। मार्था 2-3 ही दिनों में से काफी बेतकल्लुफ हो गई थी। वो थी ही कुछ इस किस्म की, आरिफ और अनवर से भी वो कुछ इस तरह घुल मिल गई थी जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। तुम अच्छा नाचते हो, इसने इमरान से कहा। वाकई, इमरान ने हैरत से कहा, अगर ये बात है तो अब मैं दिन रात नाचा करूंगा। मेरे पापा बहुत ग्रेट आदमी हैं, इन्हें बड़ी खुशी होगी। क्या तुम वाकई बेवकूफ आदमी हो, मार्था ने मुस्कुराकर पूछा। पापा यही कहते हैं। और बच्चे की मम्मी का क्या ख्याल है? मम्मी जूतियों से मुरम्मत करने की स्पेशलिस्ट हैं, इसने खास ही खास मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। मैं नहीं समझी। ना समझी हो, इंग्लैंड में जूतियों से इजहार ख्याल का रिवाज नहीं है। इतने में आरिफ की किसी पर मार्था इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वेटर इनके लिए कॉफी की ट्रे ला रहा था, इसमें एक ग्लास ऑरेंज स्क्वाश का भी था। ये सुफियान ने अपने लिए मंगवाया था। वेटर अभी दूर ही था कि इसके करीब से गुजरता हुआ एक आदमी से टकरा गया। वेटर लड़खड़ाया जरूर, मगर संभल गया और इसने ट्रे से भी संभाल ली। इमरान सामने ही देख रहा था। इसके होंठ जरा सा खुले और फिर बराबर हो गए। वो आदमी को देख रहा था जो वेटर से टकराने के बाद इससे माफी मांगकर आगे बढ़ गया था। जैसे ही वेटर ने ट्रे मेज पर रखी, इमरान इस तरफ दूसरी तरफ मुड़ा कि इसका हाथ ऑरेंज स्क्वाश के ग्लास से लगा और ग्लास उलट गया। ओहो, क्या मुसीबत है, इमरान बौखला कर बोला और ग्लास सीधा करने लगा। तुम शायद कभी शरीफ आदमियों के साथ नहीं रहे, कर्नल डिक्सन झुंझला गया, लेकिन बातोश इसे अजीब नजरों से घूर रहा था। मैं भी दूसरा लाता हूँ, इमरान ने सूफिया की तरफ देख कर कहा और ग्लास उठाकर खड़ा हो गया। सूफिया कुछ ना बोली, इसके चेहरे पर भी नागवारी के असरात नजर आ रहे थे। इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर दूसरा ग्लास तलब किया। इतनी देर में वेटर साफ कर चुका था। इमरान ग्लास लेकर वापस आ गया। सूफिया की शलवार और मार्था के स्कर्ट पर ऑरेंज स्क्वाश के धब्बे पड़ गए थे, इसलिए वो दोनों ही बड़ी शिद्दत से बोर नजर आ रही थी। ऐसी सूरत में वहां ज्यादा देर तक ठहरना करीब करीब नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल ये था कि वो उठें किस तरह। जाहिर है कि स्कर्ट और शलवार के धब्बे काफी बड़े थे और दूर से साफ नजर आ रहे थे। तुम जैसे बदहवास आदमियों का अंजाम मैंने हमेशा बुरा देखा है, कर्नल इमरान से कह रहा था। हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला, मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। एक बार मैंने संख्या के धोखे में लेमन ड्रॉप खा लिया था। मासा जिला के बाहर बुजुर्ग मुस्कुरा पड़ी। फिर क्या हुआ, आरिफ ने पूछा। बच्चा हुआ था और मुझे अंकल कहता था, इमरान ने उर्दू में कहा। तुम बहुत चहकते हो, लेकिन मासा तुम पर हरगिज आशिक नहीं हो सकती। क्या फजूल बकवास करने लगे, सूफिया बिगड़ कर बोली। इमरान कुछ ना बोला। वो कुछ सोच रहा था और उसकी आंखें इस तरह फैल गई थी जैसे कोई उल्लू एक बेक रोशनी में पकड़ा लाया गया हो। थोड़ी देर बाद वो सब वापसी के लिए उठे। सूफिया की शलवार का धब्बा तो लंबे फ्रॉक के नीचे छुप गया, लेकिन मार्था के सफेद स्कर्ट का धब्बा बड़ा बदनुमा मालूम हो रहा था। जू तो वो स्टेशन वैगन तक आई। इमरान की वजह से जो बेलुत्फी हुई थी इसका एहसास हर एक को था, लेकिन सलवारें सुनाने के अलावा और इसका कोई कर ही क्या सकता था। स्टेशन वैगन कर्नल दरगाम की कोठी की तरफ रवाना हो गई। रात काफी खुशगवार थी और मार्था अनवर के करीब ही सीट पर बैठी हुई थी, इसलिए अनवर ने गाड़ी की रफ्तार हल्की सी हल्की रखी थी। अचानक एक सुनसान सड़क पर इन्हें 3 बावर्दी पुलिस वाले नजर आए जो हाथ उठाए गाड़ी को रुकवाने का इशारा कर रहे थे। अनवर ने रफ्तार और कम कर दी। स्टेशन वैगन इनके करीब पहुंच कर रुक गई। इनमें एक सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर आगे बढ़कर गाड़ी के करीब पहुंचता हुआ बोला, अंदर की बत्ती जलाऊं? क्यों, इमरान ने पूछा। हमें इतना मिली है कि इस गाड़ी में बेहोश लड़की है। हाँ हाँ, इमरान ने कहका लगाया, बेशक बेशक है। अनवर ने अंदर का बल्ब रोशन कर दिया और सब इंस्पेक्टर चंद दिहाई हुई आंखों से एक एक तरफ देखने लगे। इमरान बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे को नजर जमाए हुए था। कहाँ है सब इंस्पेक्टर गर्जा। क्या मैं बेहोश नहीं हूँ, इमरान नाक पर उंगली रखकर मचलता हुआ बोला। मैं बेहोश हूँ तभी तो मर्दाना लिबास पहनी हूँ। ए हटो भी। सूफी अनवर और आलि बेतहाशा हंसने लगे। क्या बेवकूफी है सब, इंस्पेक्टर झिल्ला गया। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस किस्म की इत्तला कहाँ से आई है, इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, जाओ वो कोई दूसरी गाड़ी होगी, सब इंस्पेक्टर गाड़ी के पास से हट गया। गाड़ी चल पड़ी। मारता सूफियों की कहकाओं की वजह से पूछने लगी, फिर वो भी हंसने लगी। पता नहीं किस किस्म का आदमी है, इसने कहा। इसे तवक्को थी कि इमरान इस पर कुछ कहेगा जरूर, लेकिन इमरान खामोश ही रहा। वो किसी गहरी सोच में मालूम होता था। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी, इसलिए घर पहुंचकर वो सब के सब किसी न किसी तफरी में मशगूल हो गए। अनवर और बातोश ब्लेडर खेल रहे थे, कानन और आरिफ ब्रश खेलने के लिए सूफिया और मार्था का इंतजार कर रहे थे, जो लिबास तब्दील करने के लिए अपने कमरों में चली गई थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने मार्था के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। इमरान बी ग्रेटफुल। क्या बात है? मार्था ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। वो अपना स्कर्ट तब्दील कर चुकी थी। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा स्कर्ट खराब हो गया। कोई बात नहीं। ओ नहीं, लाओ स्कर्ट मुझे दो, वरना वह धब्बा मुस्तकिल हो जाएगा। अरे नहीं, तुम इसकी फिक्र ना करो, लाओ तो, वरना मुझे और ज्यादा अफसोस होगा। तुमसे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी रूह कदा के बाद मार्था ने अपना स्कर्ट इमरान के हवाले कर दिया। अब वो सूफिया के हाथ कमरे में पहुंचा। इसके हाथ में मार्था का स्कर्ट था और दूसरे हाथ में दूध की बोतल। ये क्या? सूफिया ने हैरत से पूछा। धब्बा चढ़ाने जा रहा हूँ, लाओ तुम भी शलवार दे दो। क्या बेतुकी बात है इमरान साहब, सचमुच आप बाज औकात बहुत बोर करते हैं। नहीं लाओ, पानी नहीं लगेगा, दूध से साफ करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, सूफिया भुना गई। इमरान ने शलवार उठा ली, जो अभी कुर्सी के हत्ते में पड़ी हुई थी। सूफिया उकताए हुए अंदाज में इसकी हरकतें देखती रही। इसने एक बड़े प्याले में दूध उलटकर धब्बों को मलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद धब्बे साफ हो गए। सूफिया की बड़े बालों वाली ईरानी बिल्ली बार बार प्याले पर झपट रही थी। इमरान इसे हटाता जाता। जब वो अपने काम से फारिग हो चुका तो बिल्ली दूध पर टूट पड़ी। इस बार इमरान ने इसे नहीं रोका। क्या पानी से नहीं धो सकते थे? आखिर आपको अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करने का इतना शौक क्यों है? सूफिया बोली। हाँ तो क्या मुझसे कोई बेवकूफ़ी सरजद हुई है? इमरान ने हैरत से इजहार किया। खुदा के लिए बोर मत कीजिए, सूफिया ने बेजारी से कहा। आदम ने जब इस दरख्त के करीब जाने में हिचकिचाहट जाहिर की थी, हव्वा ने भी यही कहा था। सूफिया कुछ ना बोली। इसने बिल्ली की तरफ देखा, जो दूध पीते पीते एक तरफ लुढ़क गई थी। हाँ ऐसे क्या हो गया? वो उठती हुई बोली। कुछ नहीं, इमरान की टांग पकड़कर इसके हाथ में लिटा दिया। क्या हुआ ऐसे? सूफिया चीख कर बोली। कुछ नहीं, सिर्फ बेहोश हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। आखिर ये आप क्या कह रहे हैं? सूफिया का लहजा जारहाना था। वो नकली पुलिस वाले एक बेहोश लड़की की हमारी गाड़ी में जरूर पाते, मगर मैं इस तरह ना लटका सकता। क्या? सूफिया आंखें फाड़ कर बोली। तो ये धब्बे? जाहिर है कि वो अमृत धारा के धब्बे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा अगवा, लेकिन मैंने इनकी नहीं चलने दी। आपने जानबूझकर ग्लास में हाथ मारा था? हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला। कभी कभी ऐसी हिमाकत भी सरजद हो जाती है। आपको मालूम कैसे हुआ था? इमरान ने एक नामालूम आदमी के वेटर से टकराने की दास्तान दोहराते हुए कहा। मेरी बाएं आंख हमेशा खुली रहती है, मैंने उसे ग्लास में कुछ डालते देखा था। सूफिया खौफजदा नजर आने लगी थी। इमरान ने कहा। ओ डरो नहीं, लेकिन तुम्हारे हर हाल में मेरा पाबंद रहना पड़ेगा। सूफिया कुछ ना बोली। वो इस अहमक तरीन अकलमंद आदमी को हैरत से देख रही थी। और हाँ देखो, इस वाकये का तذکرہ किसी से ना करना, इमरान ने बेहोश बिल्ली की तरफ इशारा करके कहा। आरिफ और अनवर से भी नहीं? नहीं करूंगी इमरान साहब, आप वाकई ग्रेट हैं। काश मेरे पापा भी यही समझते, इमरान ने मकमूम लहजे में कहा। इंस्पेक्टर खालिद ने बहुत उजरत में फोन का रिसीवर उठाया था। मैं खालिद हूँ, इसने माउथ पीस में कहा। क्या आप फौरन मुझे वक्त दे सकेंगे? ओह शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हुआ, इसने तेजी से रिसीवर रखा और कमरे से निकल गया। डीएस के ऑफिस के अर्दली ने इसके लिए चिक उठाई और वो अंदर चला गया। डीएस ने सर के इशारे से बैठने को कहा और पाइप को दांतों से निकालकर आगे झुक गया। कर्नल सरगम का मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है, खालिद बोला। क्यों, कोई नई बात? जी हाँ, बहुत ज्यादा अहम। मैंने कर्नल के नौकरों को टटोलने की कोशिश की थी, आखिर एक ने उगल ही दिया। कर्नल कहीं बाहर नहीं गया बल्कि यकदे गायब हो गया है। खूब, डीएस ने पाइप एश ट्रे में उलटते हुए कहा और खालिद की आंखों में देखने लगा। वो अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तनहा स्टेशन गया था, फिर वापस नहीं आया। वाह, डीएस उंगली से मेज खटखटाता हुआ कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, इसके घर वालों को तो बड़ी तश्वीश होगी। कतई नहीं, ये तो ही हैरत की बात है। अहम, डी एस ने पैर फैलाकर तभी लंगड़ाई ली और कुर्सी के पुश से टिक गया। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? डी एस ने थोड़ी देर बाद कहा। मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वाह, ये भी कोई मुश्किल मसला है? डी एस मुस्कुराया। कर्नल जरगाम भी शिफ्टन की धमकियों से ना बचा होगा, लेकिन वो गायब हो गया। इसने पुलिस को इतला नहीं दी, दूसरों ने पुलिस को इतला दी थी और वो सब मौजूद हैं। इस लाइन में सोचने की कोशिश करो, मैं सोच चुका हूँ और फिर किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचे। जी नहीं, कमाल है। अरे भाई, ये तो एक बहुत ही वाजे किस्म का इशारा है। आप ही रहनुमाई कीजिए, मैं तो अभी बकौल शख्स मुतबद्दी हूँ। आप ही से सीखना है मुझे, खालिद ने कहा। देखो, तुम दो ऐसे आदमियों के नाम धमकी के खतूत लिखो जिनमें से एक तुमसे वाकिफ हो और दूसरा ना वाकिफ। फर्ज करो तुम अपनी मौजूदा हैसियत में दोनों को लिखते हो कि वो खतरे में हैं और किसी वक्त भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वो शख्स जो तुम्हें नहीं जानता, इसे मजाक समझेगा, यही सोचेगा कि किसी ने इसे बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन इस शख्स पर इसका क्या असर होगा जो तुमसे और तुम्हारे अहदे से बखूबी वाकिफ है? बदहवास हो जाएगा, खालिद बोला। ठीक इसी तरह शिफ्टन के मामले को ले लो, हमारे लिए भी इनाम नया है। जाएगा वो लोग जिन्हें खुद खुद मौसूल हुए हैं। कर्नल हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आया, इसका ये मतलब है कि वो शिफ्टन से वाकिफ हैं। और इस तरह गायब हो जाने के ये मायने हुए कि शिफ्टन इंतहाई खतरनाक है, इतना खतरनाक कि पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कर्नल जरगाम ही शिफ्टन ना हो, खालिद ने कहा। अगर वो शिफ्टन ही है तो इसके अहमक होने में कोई शुबा नहीं, डीएस बोला। अगर वो शिफ्टन नहीं है तो इसे हमारे पास जरूर आना चाहिए था। नहीं खालिद, वो शिफ्टन नहीं है, वरना इस तरह गायब ना होता। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कर्नल जरगाम को तलाश करो। कुछ देर खामोशी रही, फिर डी एस ने पूछा, इमरान का क्या रहा? कुछ नहीं, इसकी शख्सियत भी बड़ी पुरस्कार है, डी एस हंसने लगा। फिर उसने कहा, कैप्टन फयाज ने मेरे तार का जवाब दिया है। इमरान के मुताबिक इसने लिखा है कि वो एक पढ़ले सिरे का अहमक आदमी है, फयाज का दोस्त है, यहाँ तफरीहन आया है, अक्सर हिमाकतों के सिलसिले में मुसीबतें मोल ले बैठता है। इसीलिए फयाज ने मुझे खत लिख दिया था कि अगर ऐसी कोई बात हो तो इसकी मदद ली जाए। मगर साहब, वो कर्नल जरगाम का प्राइवेट सेक्रेटरी कैसे हो गया? मुझे भी फयाज की कहानी पर यकीन नहीं, डी एस ने कहा। ये फेडरल वाले कभी खुलकर कोई बात नहीं बताते। इसके बाद कमरे पर गहरी खामोशी मुसल्लत हो गई। मेहमानों की वजह से आरिफ और अनवर को एक ही कमरे में रहना पड़ता था। ये कमरा सूफिया के कमरों से मिला हुआ था और दरमियान में सिर्फ एक दरवाजा हाइल था। इमरान ने आरिफ के सामने एक तजवीज़ पेश की। इसे यकीन था कि आरिफ फौरन तैयार हो जाएगा। तजवीज़ ये थी कि इमरान कमरे में चला जाए और इमरान आरिफ की जगह अनवर के साथ रहना शुरू कर दे। आरिफ इस तजवीज़ पर खुल उठा, क्योंकि इमरान का कमरा मार्था के कमरे के बराबर था। अनवर को इस तब्दीली में बड़ी हैरत हुई और साथ ही अफसोस भी। वो सोच रहा था कि काश इमरान ने अपनी जगह से भेजा होता। आखिर आपने वो कमरा क्यों छोड़ दिया? अनवर ने इससे पूछा। अरे भाई, क्या बताऊँ, बड़े डरावने ख्वाब आने लगे थे, इमरान ने संजीदगी से कहा। डरावने ख्वाब? अनवर ने हैरत का इजहार किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अंग्रेज लड़कियों से बड़ा खौफ मालूम होता है, अनवर हंसने लगा। लेकिन इमरान की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया। थोड़ी देर बाद अनवर ने कहा, लेकिन आपने आरिफ को वहां भेजकर अच्छा नहीं किया। अच्छा तो तुम चले जाओ, मेरा ये मतलब नहीं, अनवर हकलाया। फिर क्या मतलब है? आरिफ कोई काम सोच समझ कर नहीं करता। है तो क्या मैंने इसे वहां कोई काम करने के लिए भेजा है? मतलब ये नहीं, मतलब बात ये है, तू वही बात बताओ बताओ ना, कहीं वो कोई हरकत ना कर बैठे। कैसी हरकत? इमरान की आंखें और ज्यादा फैल गईं। ओ आप समझे ही नहीं या फिर बन रहे हैं? मेरा मतलब है कि कहीं वो इस पर डोरे ना डाल ले। ओ समझा, इमरान ने संजीदगी से सर हिला कर कहा, मगर डोरे डालने में क्या नुकसान है? फिक्र की बात तो इस वक्त भी थी जब वो रस्सियां डालता। डोरे डालना मुहावरा रहा इमरान साहब, अनवर झुंझलाहट में अपनी रान पीट कर बोला। मैं नहीं समझा, इमरान ने अहमकों की तरह कहा। ओफो, मेरा मतलब है कि कहीं वो इसे फांस ना ले। लो हौला वाला कुआ था तो पहले क्यों नहीं बताया था, इमरान ने उठते हुए कहा। कहाँ चले, जरा मार्था को होशियार कर दो। कमाल करते हैं आप भी, अनवर भी खड़ा हो गया, अजीब बात है। फिर तुम क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, अनवर अपनी पेशानी पर हाथ मार कर बोला। यार तुम अपने दिमाग का इलाज करो, इमरान बैठता हुआ नाराजगी के लहजे में बोला। जब कुछ भी नहीं था तो तुमने मेरा इतना वक्त क्यों बर्बाद कराया? चले सो जाइए, अनवर पलंग पर गिरता हुआ बोला, आपसे खुदा समझे। नहीं बल्कि तुमसे खुदा समझे, और फिर मुझे उर्दू में समझाए तुम्हारी बातें, तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। अनवर ने चादर सर पर घसीट ली। इमरान बशोर आराम कुर्सी पर पड़ा रहा। अनवर ने सोने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसे में नींद कहाँ, इसे ये सोच सोच कर कोफ्त हो रही थी कि आरिफ मार्था को लतीफे सुना सुना कर हंसा रहा होगा। मार्था खुद भी बड़ी वालूनी थी और बकवास करने वाले इसे पसंद थे। अनवर में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो जिस लड़की के मुतालिक ज्यादा सोचता था, इससे खुलकर बात नहीं कर सकता था। आजकल मार्था हर वक्त इसके जहन पर छाई रहती थी, इसलिए वो इससे गुफ्तगू करते वक्त हकलाता जरूर था। इसने इमरान की तरफ करवट बदलते वक्त चादर चेहरे से हटा दी। आखिर कर्नल साहब कहाँ गए, इसने इमरान से पूछा। आ हाँ, बहुत देर में चौंके, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा ख्याल है कि इन्हें कोई हादसा पेश आ गया। क्या? अनवर उछल कर बैठ गया। ओहो फिक्र ना करो, हादसा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें परेशान होना पड़े। देखिए इमरान साहब, अब ये मामला नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। मैं कल सुबह किसी बात की परवाह किए बगैर कर्नल साहब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। इमरान कुछ ना बोला, वह किसी गहरी सोच में था। अनवर बड़बड़ाता रहा। कर्नल साहब बूढ़े हुए, मुझे तो अब इनके सही उल दिमाग होने में भी शुबा है। हाँ अच्छा, तो वो रिपोर्ट क्या होगी, इसने पूछा। यही कि कर्नल साहब किसी नामालूम आदमी या गिरोह से खाइफ थे और अचानक गायब हो गए। और रिपोर्ट करने में ताखीर की वजह क्या बताओगे? ये भी बड़ी बात नहीं, कह दूंगा कि कर्नल साहब के खौफ की वजह से हेस बेस में ताखीर हुई, वो पुलिस को रिपोर्ट देने के खिलाफ थे। ठीक है, इमरान ने कहा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचता रहा, फिर बोला, जरूर रिपोर्ट कर दूं। अनवर मुतैयराना नजरों से इसे देखने लगा, लेकिन इमरान ने कहा, तुम मेरे मुतालिक हरगिज कुछ ना कहोगे, समझे? मैं सिर्फ कर्नल का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। क्या आप इस वक्त संजीदा हैं? मैं गैर संजीदा कब रहता हूँ? आखिर अब आप रिपोर्ट के हक में क्यों हो गए? ज़रूरत, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, मैं एक छोटा सा बंगला बनवाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत सी बीवी चाहता हूँ और 1.5 दर्जन बच्चे। अनवर से झुला कर लेट गया और चादर खींच ली। इमरान ने संजीदा सूरत बारतोश को हैरत से देखा, जो जमीन पर दोजानों बैठा एक नन्हे से खुदरू पौधे पर झुका हुआ शायद इसे सूंघ रहा था। फिर शायद बारतोश ने भी इमरान को देख लिया। इसने सीधे खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुरा कर बोला, मुझे जड़ी बूटियों का खपत है। अच्छा, इमरान ने हैरत जाहिर की, तब तो आप इस बोटी से जरूर वाकिफ होंगे जिसे खाकर आदमी कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं। बारतोश मुस्कुरा पड़ा। इसने कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने किसी ऐसी बोटी के मुतालिक आज तक नहीं सुना। ना सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है, मुझे जड़ी बूटियों से इश्क है। ओहो, बारतोश ने हैरत का इजहार किया। अगर ये बात है तो आप जरूर मेरी मदद करेंगे। मदद? इमरान इसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा। हाँ, एक बोटी ही तलाश, मुझे सोनागिरी लाई है, बारतोश बोला। अगर वो मिल जाए? इमरान ने पहली बार इसके चेहरे से संजीदगी रुखसत होते देखी। उसकी छिपान आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी और एक पल के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे वो किसी बच्चे का चेहरा हो। पार्ट थ्री यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब चढ़ानों में फायर का बकिया हिस्सा पार्ट फोर में समाप्त फरमाइए।